नमस्कार भारत, 27 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। देश में हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार 10 संदिग्धों को आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। कथित आईएस प्रभावित मॉड्यूल सामने आने के बाद सवाल, कितना गंभीर है खतरा?
ये देखते हुए कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान है, भविष्य के खतरे की ओर से हमें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा।
सैनिकों को क्रिसमस की बधाई देने इराक पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप।
The reason I'm here today is to personally thank you and every service member throughout this region for the near elimination of the ISIS।
और बीजेपी से अब अपना दल का शिकवा।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई है, उसको जो बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि ये लोग किसी बड़े चरमपंथी हमले की तैयारी कर रहे थे। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में हाइपरसोनिक मिसाइल अवंगार्ड का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा कि ये मिसाइलें अब किसी भी मौजूदा या अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ने इसके साथ ही एक ऐसा परमाणु सक्षम हथियार तैयार कर लिया है जिसका सामना करना दुश्मनों के लिए चुनौती भरा होगा। उन्होंने कहा,
नई सिस्टम अवंगार्ड न्यूइज़ीम для сегодняшних и для перспективных средств।
ये नया हथियार किसी भी संभावित हमले का सामना करने के लिए तैयार है। इसका सफल परीक्षण हमारे लिए बड़ी सफलता है। नए साल पर ये देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ये थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। यूक्रेन ने अपने 10 प्रांतों से मार्शल लॉ हटा लिया है। अपने 3 जहाजों और 23 नौसैनिकों पर रूस के कब्जे के बाद देश के एक हिस्से में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा था कि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 दिनों तक मार्शल लॉ लगाया जाएगा जहां रूस के हमले की आशंका है। राष्ट्रपति पोरोशेंको ने कहा कि उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद आपातकाल को समाप्त करने का फैसला किया है। आज मार्शल लॉ को खत्म किया जा रहा है। ये देश में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के बाद तय किया गया है। ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति पोरोशेंको के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस का कहना है कि इसराइल द्वारा सीरिया में किए गए इन हमलों से 2 यात्री विमान सीधे तौर पर खतरों में आ गए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन 2 विमानों में से एक विमान दमिश्क में लैंड कर रहा था और दूसरा विमान बेरूत में। सीरिया का कहना है कि इसराइल के इस हमले में दमिश्क के पास हथियारों के एक डिपो को नुकसान हुआ है और इसके अलावा 3 सैनिक भी घायल हो गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर इराक में तैनात अमरीकी सैनिकों से मुलाकात की। ये इस क्षेत्र में ट्रंप का पहला दौरा था। उनके साथ अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी थे। उनकी ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब जिम मैटिस ने कुछ दिन पूर्व ही अमरीकी रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। सूडान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि एक हफ्ते से हो रहे प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने 37 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। गृहमंत्री अहमद बिलाल उस्मान ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान 17 प्रदर्शनकारियों के मौत की खबर है और 35 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उस्मान ने मारे गए लोगों और उनके परिवार के प्रति दुख जाहिर किया है। सूडान में पिछले एक सप्ताह से ईंधन और खाने पीने की चीज़ों के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने मंगलवार को लीबिया की राजधानी त्रिपोली के विदेश मंत्रालय के परिसर में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। इस आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हमले में 3 चरमपंथी हमलावर भी मारे गए। 2 हमलावर मंत्रालय के भीतर तक घुसने में सफल रहे थे और ऊपरी मंजिल तक पहुँच गए थे। उन्होंने अपने साथ बम रखे थे जिनके विस्फोट से इमारत में आग लग गई थी। मेक्सिको के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के मलबे से किसी भी तरह के विस्फोटक के सबूत नहीं मिले हैं। इस हादसे में राज्य की गवर्नर और उनके पति समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ओर से कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में की गई गिरफ्तारियों की। एनआईए ने कल दिल्ली में 17 जगह छापे मारे और कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश में भी की गई थी। एनआईए का दावा है कि ये लोग इस्लामिक स्टेट से प्रभावित संगठन हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़े हैं और देश में चरमपंथी हमला करने की तैयारी में थे। इस पूरे अभियान को लेकर एनआईए के प्रवक्ता आलोक मित्तल ने क्या जानकारी दी वो सुनिए।
शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। इसमें से 10 में से 5 लोग यूपी से अरेस्ट हुए हैं और 5 लोग दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। ये पूरी तरीके से एक नया आईसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल है। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक विदेश में बैठे हुए एक हैंडलर से ये लगातार टच में थे। जो ये पूरा मॉड्यूल है इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का। इनके टारगेट्स जो कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इंपॉर्टेंट पर्संस और क्राउडेड प्लेसेस।
ये थे आलोक मित्तल, जो ये दावा कर रहे थे कि गिरफ्तार किए गए लोग प्रमुख संस्थानों और अहम लोगों पर हमला करने की तैयारी में थे। एनआईए के इस अभियान को कितनी बड़ी कामयाबी माना जा सकता है और देश में इस्लामिक स्टेट का कितना खतरा मौजूद है, इन सवालों के साथ बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने बात की उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह से।
देखिए, हम दृष्टया तो ये सफलता ही मानी जाएगी। कितनी बड़ी सफलता है ये तो कालांतर में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इनके इंटरवेंशन होंगे, इनके क्या योजना थी वो जैसे जैसे मालूम होगा फिर उतनी ही बड़ी सफलता मानी जाएगी। पर प्रथम दृष्टि में फिर सफलता है कि उन्होंने आईएस मॉड्यूल्स को बता दिया है और उनके कथनानुसार उनकी बात को अभी तो सही ही मानना पड़ेगा कि उनका इरादे से कि महत्वपूर्ण स्थानों पे विस्फोट करें और हो सकता है कुछ गणमान्य नेताओं को पर निशाना साधें, उनको मारने की कोशिश करें, ये उनकी योजना में था। तो अभी तक जो कुछ सामने आया उससे तो मैं समझता हूँ कि अच्छी सफलता है।
जिस तरीके से इतने लोगों को गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा तमाम हथियार बरामद हुए हैं, क्या एक तरीके से पुलिस की नाकामी भी समझी जा सकती है कि इतने बड़ा जखीरा जो है इकट्ठा किया जा रहा था और पुलिस को पता भी नहीं लग रहा था, क्या कहेंगे इसको?
देखिए, नाकामी तो नहीं कहेंगे, आखिर ये लोग अंडर ऑब्जर्वेशन थे, इनके रडार पे था और पुलिस एनआईए सभी लोग इस पे ऐसा लगता है कि लगे थे। और जब ये समझा गया कि अब मतलब जुर्म पक गया है और काफी सबूत इकट्ठा हो गया, तब इन लोगों ने उस पे हथौड़ा मारा और रेड्स किए और लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसी बात तो नहीं है कि पुलिस को पता नहीं था, जरूर कुछ प्राइमरी इंटेलिजेंस हो सकता है पुलिस के द्वारा आई हो, स्थानीय इंटेलिजेंस के द्वारा आई हो, बाद में इसकी गंभीरता को और इसके महत्व को देखते हुए एनआईए बीच में आ गई हो।
जहां तक आईएसआईएस का देश में मौजूदगी की बात करें तो इससे पहले भी जो कुछ गिरफ्तारियां हुई थी वो दक्षिण भारत से ज्यादा होती थी, हैदराबाद से या केरल से होती थी, लेकिन इस बार उत्तर भारत में और खासतौर पर राजधानी दिल्ली के इलाकों से पकड़ा गया है। तो कितना बड़ा खतरा देश के अंदर आईएस मॉड्यूल अभी भी बना हुआ है?
देखिए, ऐसे तो हमारा गृह मंत्रालय बराबर ये कहता रहा है कि बहुत कम संख्या में माइनॉरिटीज के आदमी इस इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी की ओर आकर्षित हुए हैं। और एक भूतपूर्व डायरेक्टर आईबी ने अभी हाल में एक बयान दिया था कि अभी तक कुल केवल 108 आदमी ऐसे नोटिस में आए हैं जो इस्लामिक स्टेट को जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये बात अपनी जगह सही है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये तथ्यात्मक इसमें कोई गलती है, ये तथ्य सही हो सकते हैं, परंतु जैसा कि इंटरनेशनल एजेंसी हमें बराबर सचेत करती आ रही है और यूएस कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म पे भी ये लिखा गया है कि भले ये बात सही हो कि कम संख्या में माइनॉरिटीज के लोग इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने गए हों, उसकी तरफ से लड़ने गए हों, पर ये देखते हुए कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान है, उसको देखते हुए भविष्य के खतरे की ओर से हमें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा।
ये थे यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह और उनसे बात कर रहे थे नवीन नेगी। एनआईए ने कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो सभी इस्लामिक स्टेट से प्रभावित संगठन हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके मुखिया का नाम मुफ्ती सोहेल बताया गया है। सोहेल उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। अमरोहा से कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा इन गिरफ्तारियों के बाद अमरोहा पहुंचे। मैंने कुछ देर पहले दिलनवाज से बात की।
अमरोहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर है, मुस्लिम बहुल शहर है ये, और एक शांत शहर की इसकी अपनी एक मिसाल रही है कि ये बड़ा शांतिपूर्ण शहर है। इस तरीके की कभी कोई वारदात पहले यहाँ सामने आई नहीं है। तो कल सुबह जब लोग जागे और पुलिस की भारी मौजूदगी यहाँ देखी तो कई तरीके की अफवाहें, शक और सवाल शहर में तैरने लगे। सुबह करीब 11 बजे सही से पता चल पाया लोगों को कि दरअसल ये NIA की छापेमारी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मैं मुफ्ती सुहेल के घर के पास जब पहुंचा तो कोई वहां पर बात करने को तैयार नहीं था उनके बारे में खुलकर। हालांकि ये जरूर मुझे बताया गया कि ये करीब 1.5 महीना पहले यहाँ अपने पुश्तैनी मकान में आके रहने शुरू हुए थे और इससे पहले ये अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रह रहे थे। इससे ज्यादा कोई उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। मुझे तो बड़ी मुश्किल उनके घर तक पहुंचने में हुई क्योंकि कोई उनका वहां रास्ता बताने तक को तैयार नहीं था।
बताया जा रहा है कि पूरी साजिश वहां तैयार हो रही थी अमरोहा में। तो आसपास के जो लोग थे, क्या उन्हें कोई अंदेशा था, कोई उन्हें कभी शक हुआ कि इस तरह का कुछ वहाँ हो रहा है? किस तरह की जानकारी आपके पास सामने आई है?
देखिए, अमरोहा जिले से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक ये मुफ्ती साहब हैं जिनको पूरे संगठन का मुखिया बताया जा रहा है। इसके अलावा एक मोहम्मद इरशाद हैं जो ऑटो चलाते हैं और 2 लोग और हैं, उनमें से एक वेल्डिंग का काम करता है, आयरन वेल्डिंग का, एक उनके भाई है। तो जो मोहम्मद इरशाद है, मैंने उनकी बीवी से बात की, देर शाम होने तक भी उनको ये पता नहीं था कि उनके शोहर को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसा कि पता चल पा रहा है, जो पुलिस ने जो इम्प्रोवाइज रॉकेट लॉन्चर जिसको कहा जा रहा है कि स्थानीय तौर पर बना हुआ बरामद किया है, वो यहीं पे तैयार हुआ, और जो वेल्डर है उससे उसको वेल्ड कराया गया। मेरी जो खुद यहाँ के पुलिसकर्मियों से बात हुई है और वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है जांच एजेंसियों का, उनका भी यही कहना है कि ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड व्यक्ति थे सुहेल, और इन्होंने बाकी अन्य लोगों को जो उनके संपर्क में थे रेडिकलाइज किया और इसके लिए मनाया। तो ऐसा कहना कि बाकी यहाँ किसी को जानकारी थी, शक था, बहुत जल्दबाजी होगा।
ये थे BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा। अमरोहा से इरशाद नाम के एक ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। दिलनवाज पाशा ने उनकी पत्नी से बात की।
मेरे शौहर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मैं बीड़ी बनाती हूँ, बीड़ी बनाकर मैं अपना कपड़ा वगैरह सब मैं अपने उसमें करती हूँ।
पुलिस किस वक्त आई और पुलिस जब आई तो क्या कहा आपसे?
पुलिस पहले दरवाजा खटखटाया, ये तो बेखबर सो ही रहे थे, और इनको यहाँ से सोते से उठा लिया, दोनों हाथ पकड़ कर पीछे कर दिए और नीचे ले गए, फिर नीचे उनको बैठा दिया। उसके बाद में फिर यहाँ की खाना तलाशी करी सब, तो यहाँ पर कुछ मिला नहीं, मोबाइल थे और एक हमारी सब्जी काटने की का चाकू वो ले गए।
और क्या बताएं आपको जब उनको गिरफ्तार किया कि क्या इल्ज़ाम है उन पर?
पूछा हमने, बहुत पूछा कि आप वजह तो बताइए, क्या वजह है कि बताएंगे बताएंगे, ऐसे ही करते करते फिर मैंने ये कहा ये बताइए आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें, तो कहने लगे कि SP को जानती हो, मैंने कहा जी कि हम वहीं लेकर जा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ वजह तो बताइए। उन्होंने कहा कि कोई मैं मुजरिम थोड़ी हूँ, हथकड़ी लगाई उनके, बोले कोई मैं मुजरिम थोड़ी हूँ ना मैं सरभागूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप मुझे किस वजह से गिरफ्तार कर कर लेकर जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया उन्होंने।
अब जब आपको इल्जामों का पता लगा है, आपने TV में खबरें देख ही ली होंगी, तो अब आपका क्या कहना है?
देखा भी कुछ भी, कुछ नहीं देखा, मेरे यहाँ तो TV भी नहीं है, हम तो खुद बहुत गरीब लोग हैं, देखिए आप मेरे यहाँ TV कब है।
उन पर एक बड़ा हमला करने की साजिश रचने के आरोप है, कहा गया है कि जो और उनके साथी हैं उनसे बंदूकें बरामद हुई हैं, बड़े हथियार बरामद हुए हैं।
उनका कोई ऐसा साथी नहीं था और ना वो ये काम करते थे, ये बहुत गलत इल्जाम लगाया।
ये थी अमरोहा से गिरफ्तार इरशाद की पत्नी और उनसे बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिसमस के मौके पर अचानक इराक पहुंच गए। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी थी। ट्रंप ने इराक में क्या किया और क्या कहा, बता रहे हैं भूमिका राय।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर इराक में मौजूद अमरीकी सैनिकों से मुलाकात की। हालांकि उनका ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था। उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी थी। वो इराक में मौजूद सैनिकों को उनकी सेवाओं, उनकी कामयाबी और उनकी कुर्बानियों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका की इराक से सैनिकों को हटाने की कोई योजना नहीं है। ट्रंप का इराक दौरा उस वक्त हुआ है जब मध्य पूर्व की रणनीति पर मतभेद को लेकर कुछ दिन पहले ही अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। ये इस क्षेत्र में ट्रंप का पहला दौरा था। उनके साथ अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी थे। वो सैनिकों के साथ करीब 3 घंटे तक रुके।
The reason I'm here today is to personally thank you and every service member throughout this region.
ट्रंप कह रहे थे कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप सभी को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करना चाहता था। 2 साल पहले जब मैं राष्ट्रपति बना था तो जो चरमपंथी संगठन यानी ISIS काफी मजबूत था, आज उसकी स्थिति कुछ अलग है। ट्रंप की योजना फ्लोरिडा स्थित अपने क्लब में क्रिसमस मनाने की थी, लेकिन सरकार का कामकाज आंशिक तौर पर ठप होने की वजह से वो वॉशिंगटन में ही रुके। इराक में अब भी अमेरिका के 5,000 सैनिक हैं। वो इराक सरकार को इस्लामिक स्टेट समूह से बचे हुए लड़ाकों से संघर्ष में मदद दे रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा, अगर हम सीरिया में कुछ करना चाहते हैं तो अमेरिका इराक को ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया। ट्रंप ने कहा, मैं शुरुआत से ही साफ करता रहा हूं कि सीरिया में हमारा मिशन ISIS की सैन्य ताकत को खत्म करना था। 8 साल पहले हम वहां 3 महीने के लिए गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हम अब सही कदम उठा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते हफ्ते अमरीकी सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाने के फैसले का ऐलान किया था।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। आगे बताएंगे कि एनडीए में शामिल अपना दल एस को बीजेपी से क्या है शिकायत, और राजस्थान की नई सरकार का वो कौन सा फैसला है जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज के अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। कुलदीप मिश्र मौजूद हैं अखबारों के साथ।
जी वात्सल्य, सबसे पहले तो शुरुआत जो इस्लामिक स्टेट से प्रभावित होकर लोगों ने चरमपंथी ग्रुप बनाया, रॉकेट लॉन्चर के साथ 10 लोग गिरफ्तार किए गए, ये अखबार ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। ज़्यादातर अखबारों ने इसे मुख्य खबर बनाया है। और एक और खबर पहले पन्ने पर है कि आज लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पर चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर व्हिप जारी किया।
जी, बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
जी, तो आज चर्चा होनी है और कांग्रेस भी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो भी इस पर चर्चा के लिए तैयार है। एक खबर और दैनिक भास्कर अखबार में पहले पन्ने पर है कि अमेरिका में क्रिसमस मनाने गए 3 भारतीय बच्चों की जलने से मौत हो गई, सेलिब्रेशन के दौरान लगी आग में मेज़बान ने भी दम तोड़ा। ये खबर दैनिक भास्कर अखबार ने दी है। अमेरिका के कोलिर विले में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे ये 3 बच्चे, एरिन नायक, शरिन नायक और जॉय नायक। एक खबर और दैनिक भास्कर में है, भाजपा नेता राम माधव का बयान है जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द नहीं हुआ तो वे दूसरे विकल्प तलाशेंगे। भाजपा महासचिव राम माधव ने संकेत दिए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी होती है, जो कि जनवरी से सुनवाई शुरू होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दूसरे विकल्प भी तलाशेगी।
इसके अलावा इस मामले में अलग अलग सुर सुनाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से।
जी, और अमर उजाला में एक खबर है पहले पन्ने पर, 3 मंत्रियों के सचिवों का घूस मांगते स्टिंग जांच के आदेश। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री हैं जिनके
एक चैनल ने ये स्टिंग कल किया था और दिखाया था।
बिल्कुल, ABP न्यूज पे ये खबर आई थी। और ये मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, अर्चना और संदीप सिंह। उनके निजी सचिवों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, पैसे मांगने का आरोप है ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। दिल्ली में जो ठंड की खबर है वो भी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है कि दिल्ली में पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस।
जी, आप तो अभी कुछ देर पहले आए हैं, कैसी सर्दी बाहर,
खासी ठंड है बाहर, कोहरा भी है, ठंडी हवाएं भी हैं।
जी,
और एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर दी है, क्योंकि अब गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बातचीत शुरू हुई है, तो शिवसेना ने भी अब अपनी मांग थोड़ी तीखी कर दी है। और सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है कि बराबर बराबर सीटें महाराष्ट्र में लोकसभा में शिवसेना ने मांगी।
जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप मिश्र। आपने एनडीए के साथियों की बात की, तो एनडीए में शामिल एक और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इसके नेता अपनी नाराजगी छुपा भी नहीं रहे हैं। ये पार्टी है अपना दल एस। हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल से बात की और सबसे पहले नाराजगी की वजह के बारे में ही पूछा।
2014 में जब हम लोग पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए मिल करके आए, तो हमने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई की तरह काम किया और 73 सीट उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। 2017 में फिर हमने छोटे भाई का जो रोल है वो अदा किया और उत्तर प्रदेश में 324 सीटें भाजपा अपना दल और सुहेलदेव समाज पार्टी की सीटें आई। हमने अपना तो रोल अदा कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसको जो बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही।
एनडीए गठबंधन में आपकी ही एक पार्टी ऐसी है जिसने अब तक किसी तरह के शिकवे शिकायत गिले शिकवे भारतीय जनता पार्टी से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपको सार्वजनिक रूप से ये शिकायत करनी पड़ रही है? बड़े भाई और छोटे भाई का क्या धर्म होता है भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना पड़ रहा है? ऐसा ये अचानक हुआ या फिर इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही थी?
ये परेशानी उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई है। हम मेरा समाज के उन कार्यकर्ताओं के जवाब देते देते परेशान हो गए, तब मजबूर होकर के जब पानी सर के ऊपर निकल गया है तब हमको अपनी बात रखनी पड़ी। बंद कमरे में तो हम लगातार अपनी बात भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और भाजपा प्रदेश नेतृत्व के सामने रखते रहे। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, दोनों लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखी तो उन्होंने उनको हल करने का प्रयास किया। पर प्रश्न ये उठता है कि आप एक बार निर्देशित कर सकते हैं अपने जूनियर को, लेकिन क्या रोज रोज छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर पंचायत करना पड़ा तो ये बड़े कष्टदायी स्थिति है सहयोगी दल के रूप में।
तो आपकी पार्टी ने क्या सोचा है? क्या कोई अगला कदम भी उठा सकते हैं, किसी दूसरे गठबंधन में भी जा सकते हैं या फिर लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का भी फैसला कर सकते हैं?
देखिए, दो विषय आते हैं। पहला तो हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हम चाहते हैं कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 की तरह प्रधानमंत्री बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। पर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई को बड़ा दिल रखना पड़ेगा और अपने सहयोगियों को उनका उचित हक और सम्मान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जिनमें पिछड़ों और दलितों ने 324 विधायकों का बहुमत देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन पिछड़े और दलितों की अपेक्षाओं को भी पूरा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निराश हो जाएं, नाराज हो जाएं और वो दूसरी तरफ चले जाएं।
ये थे अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल और उनसे बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। उधर राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार के दौरान चलाई जा रही योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी में है। ये फैसला बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
सरकारी लेटर पेड से अब दीनदयाल उपाध्याय का नाम ओझल हो जाएगा। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार का फरमान था कि सरकारी लेटर पेड पर स्वर्गीय उपाध्याय का नाम और तस्वीर प्रस्तुत रहे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसे बदलने का इरादा किया है। इसके साथ ही भामाशाह योजना में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर अब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार मुफ्त दवा योजना शुरू करने का इरादा रखती है। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल कहते हैं,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से या भामा साहब पर मुख्यमंत्री या कार्ड के नाम से, तो भामा साहब तो हम बंद नहीं करेंगे, तो कार्ड बंद हो जाएगा।
सरकार अटल सेवा केंद्र का भी नामकरण करेगी, क्योंकि इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अब ये राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र होगा। विश्लेषक प्रोफेसर राजीव गुप्ता कहते हैं, अटल प्रधानमंत्री थे लेकिन उपाध्याय के नाम का कोई औचित्य नहीं है।
दीनदयाल उपाध्याय के नाम को, उस नाम को हटाए जाने को मैं गलत इसलिए नहीं मानता, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के अध्यक्ष थे। उनका किसी भी देश की या किसी भी प्रांत की सरकार के साथ में कभी कोई लेना देना नहीं था।
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं, यह ठीक नहीं है।
सरकार की जो सोच है वो विकास उन्मुखी, समाज उन्मुखी की नहीं मानी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है।
सियासत में नाम की बहुत चाहत है, नाम में शोहरत है, बुलंदी है, लेकिन सवाल ये है कि सूरत बदलेगी या सीरत, इस पर राजनीति चुप्पी साध लेती है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब एक खास रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के पास एक गांव में 10 विकलांग व्यक्ति दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। ये सभी मिलकर राशन की एक दुकान चला रहे हैं। इस दुकान की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी है। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
काश मैं जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हम सारे जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम।
इस गीत को गा रहे रामेश्वर महतो, घुमेश्वर मुंडा और सुंदरलाल महतो की आंखें नहीं है। नारायण कुमार महतो पैर से लाचार है। तेजनाथ महतो देख और चल तो सकते हैं लेकिन वे बोलने व सुनने में असमर्थ है। तारकेश्वर मुंडा, फागु करमारी, पूरन महतो, नागेश्वर महतो और बलवंत कुमार भी शरीर के किसी न किसी अंग से लाचार है। इसके बावजूद इनका कोई काम नहीं रुकता। ये सब लोग उस बिरसा विकलांग स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं जिसे सरकार ने और मांझी प्रखंड के बारीडी गांव में राशन दुकान चलाने की जिम्मेवारी सौंपी है। ये समूह के सचिव नारायण कुमार महतो कहते हैं कि भले ही मेरे समूह का हर सदस्य विकलांग हो लेकिन हम लोग साथ मिलकर किसी स्वस्थ व्यक्ति से अधिक काम कर लेते हैं।
हमारे समूह में 10 दिव्यांग भाई बहन दिव्यांग हैं। इसमें से 3 व्यक्ति जो हमारे समूह का अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और एक सदस्य है, 100% आँख से ब्लाइंड है। बाकी एक मेरा समूह का सदस्य है, वो है तेजनाथ महतो। वो व्यक्ति ना तो सुनाई देता है उनको, ना बोल पाते हैं। बाकी हम लोग 6 व्यक्ति हैं समूह में, हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड।
इस समूह के अध्यक्ष रामेश्वर महतो की आंखें बचपन में ही खेलने के दौरान खराब हो गई। 15 साल की उम्र होने से पहले ही उन्हें दिखना बंद हो गया। वे उस दिन को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं लेकिन फिर संभलते हुए कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी बदल रही है।
जैसा लगता है अभी तो हम लोग का उद्घाटन में भी खर्च हुआ, लाइसेंस में भी खर्च हुआ है ना, ये सब तो इतना दिन में कुछ भरपाई हो गया सर। लेकिन आगे जाके ऐसा लगता है जो हम लोग इस डीलर से डीलरशिप में हम लोग का फायदा होगा और बदलाव बहुत देखने को मिलेगा सर।
इस राशन दुकान के खुलने से पहले घुमेश्वर मुंडा की कमाई का जरिया मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी और विकलांगता पेंशन थी। अब उनकी कमाई बढ़ गई है और उन्हें नहीं लगता कि वे लाचार है। घुमेश्वर मुंडा कहते हैं,
सरकार तरफ से 600 मिलता है यार, नरेगा फरेगा नहीं तो हम लोग तो काम कर लेते हैं, जो भी 2-4 पैसा जो भी करते हैं लेकिन कर लेते हैं। रोज के काम ने दिक्कत तो तनी मनी होता है, नहीं दिक्कत होता है सो बात नहीं है। एगो काम अगर मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं मिलने से तो दिक्कतें होता है। फिर पैसा नहीं काम कीजिएगा, नहीं अगर किसी तरह का बुद्धि लगाएगा तो कहाँ से पैसा।
जब मैं इनकी पीडीएस दुकान पर पहुंचा तो बारीडीह की सीता देवी यहाँ राशन लेने पहुंची थी। मैंने उनसे पूछा कि राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। उनका कहना था,
ये लोग खुद अपने से करते हैं, आँख नहीं है तो बलवंत का है ना, वही करते हैं। नहीं सकते हैं तो जो आते हैं उसी से थोड़ा हेल्प लेते हैं, चाहे तो जो वहाँ पर खड़ा रहते हैं उससे थोड़ा मांगते हैं कि थोड़ा मदद कर दीजिए, इसी तरह दुकान चलाते हैं।
आपने अंधे और लंगड़ी की वो प्रचलित कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद कर अपनी जिंदगी चलाते थे। इस पर बाद में हिंदी फिल्म भी बनी जिसका हीरो अपने गाने के माध्यम से को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह भी एक इंसान है और सामान्य लोगों की तरह काम कर सकता है। अब बारीडी गांव के युवा उसी गाने को चरितार्थ कर रहे हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब बात मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की। मैच का हाल बताने के लिए मौजूद हैं कुलदीप मिश्र जी। कुलदीप, क्या स्थिति है मैच की?
जी, मैच में भारतीय टीम ने, विराट कोहली की टीम ने पूरी तरह से मैच पर दबदबा बनाया हुआ है। विराट कोहली खुद अर्धशतक बना चुके हैं, 68 रन बनाकर खेल रहे हैं 178 गेंदों पर। और चेतेश्वर पुजारा ने बहुत शानदार शतक बनाया है, 102 रन उन्होंने बना लिए हैं 291 गेंदों पर। अभी पहला सेशन चल रहा है दूसरे दिन का और भारतीय टीम की स्थिति बहुत मजबूत इस लिहाज से भी नज़र आ रही है क्योंकि अभी अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और उसके बाद रविंद्र जडेजा तक अच्छी बैटिंग लाइनअप भारतीय टीम की बची हुई है। तो भारतीय टीम अगर आज चाहे तो दिन भर बल्लेबाजी करके एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने रख सकती है। आप जानते हैं कि भारतीय टीम ने जब शुरुआत की थी तो मयंक अग्रवाल जो डेब्यू कर रहे हैं इस मैच में, उनका पहला मैच था, उन्होंने शानदार 76 रन की पारी बनाई खेली थी जिससे भारतीय टीम को एक शुरुआत मिली। और अभी तक जो पिच का हाल है वो भारतीय टीम को ऐसा लग रहा है कि पिच बहुत रास आ रही है मेलबर्न की।
जी, रन रेट तो थोड़ा कम है, 2.3 के रन रेट से भारतीय टीम इस समय बैटिंग कर रही है लेकिन अच्छा स्कोर बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, 274 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पुजारा की बात आपसे संक्षेप में करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी सीरीज जा रही है उनके लिए, दूसरा शतक।
जी, 300 से ज़्यादा रन वो बना चुके हैं और इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
बहुत शुक्रिया कुलदीप मिश्र। और चलते चलते मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से ही सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि ये लोग किसी बड़े चरमपंथी हमले की तैयारी कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में हाइपरसोनिक मिसाइल अवंगार्ड का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा कि ये मिसाइलें अब किसी भी मौजूदा या अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन ने अपने 10 प्रांतों से मार्शल लॉ हटा लिया है। अपने 3 जहाजों और 23 नौसैनिकों पर रूस के कब्जे के बाद देश के एक हिस्से में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। रूस का कहना है कि इसराइल द्वारा सीरिया में किए गए इन हमलों से 2 यात्री विमान सीधे तौर पर खतरे में आ गए थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर इराक में तैनात अमरीकी सैनिकों से मुलाकात की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।